मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज अप्रैल महीने का आखिरी दिन है, वर्ष है 2019 और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोग एक केस के बारे में बातें कर रहे थे और आपको याद होगा कि किस तरह से दो दोस्तों के मन में इस बात को लेकर के बड़ा द्वंद चला कि जो 10 रुपये रेस्टोरेंट वाले ने हमें ज्यादा दिए हैं वो हम उन्हें वापस करें या न करें, और इसी को लेकर के कल हम लोगों ने कुछ बातें देखी हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मुझे इस केस स्टडी पर मिली और फिर मैंने ये भी महसूस किया कि बात शायद पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ ऐसी कसमसाहट सी थी, ऐसा खालीपन था कि शायद जो बात कही जानी चाहिए वो कही नहीं जा सकी है, और अगर कोई बात आधी अधूरी रह जाती है तो मुझे लगता है कि शायद वो सबसे खतरनाक बात होती है। इससे तो बेहतर है कि वो बात शुरू ही न की जाए। तो मित्रों, इस बात के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि कल के ही विषय को अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आज इसे पूर्ण विराम देना चाहूंगा। कल देखिए, मैंने जो अपनी बात की समाप्ति की थी वो इस बात पर खत्म हुई थी कि इनफैक्ट जो 30 सिक्कों के लिए जो जुड़ास ने ईसा मसीह को बेचने की कोशिश की थी, इनफैक्ट उसने ईसा मसीह को नहीं बेचा था, उसने अपने आप को ही बेचा था। यानी उसने अपनी ईमानदारी की, अपनी इंटीग्रिटी की, अपने शिष्यत्व की जो कीमत लगाई वो 30 सिक्के थे, जो समझ लीजिए कि उस समय हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, आई डोंट नो। तो दरअसल देखिए कि जब हम इस तरह की चीजों के बारे में अपने पक्ष में निर्णय लेते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम अपनी कीमत निर्धारित कर रहे हैं। देखिए, ईमानदारी की जो एक परिभाषा दी जाती है और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि दुनिया हमें देख रही है और हम उस समय ईमानदार बने हुए हैं तो हम कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। उस समय तो हर कोई ईमानदार बना रहता है। ईमानदारी की सही परीक्षा तो तब होती है जब कोई देख नहीं रहा हो और आपके पास चुराने के लिए, बेईमानी करने के लिए ढेर सारे मौके हैं और ढेर सारी संपत्तियां पड़ी हुई है, अशर्फियों का ढेर लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। यही सही परीक्षा की घड़ी है कि आप अपने मन पर कितना नियंत्रण रख सकते। नहीं, यह चीज मेरी नहीं है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, और चूंकि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है इसलिए मैं इसे उठा नहीं सकता, मैं अपने लिए इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हमारी आंतरिक दृढ़ता होती है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यही आंतरिक दृढ़ता हमारी चेतना की, आप यूं कह लीजिए, रक्षा करती है। उसकी जो धवलता है, उसकी जो निर्मलता है, उसका जो सफेदपन है, उसको बनाए रखती है। हमारी चेतना प्रदूषित कैसे होती है, चेतना पर दाग कैसे पड़ते हैं, जिसे कबीरदास जी ने कहा कि लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। तो कबीरदास जी की जो ये चुनरी है, ये किस चीज की चुनरी है? ओढ़ने वाली चुनरी तो नहीं है, ये चुनरी चेतना की ही चुनरी है कि मेरी इस चेतना पर दाग लग गए हैं और मैं इसे मिटाऊं कैसे, कैसे इसे मैं धोऊं, कैसे इसे मैं इससे छुटकारा पाऊं। तो ये जो कोशिश होती है जो आंतरिक दृढ़ता के जरिए, वो इनफैक्ट सही मायने में ये नहीं कि हम चेतना में जो दाग लग गए उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, बल्कि सच ये है कि हम चेतना में दाग ही नहीं लगने देते। जैसा कि कबीरदास ने कहा, जस की तस धर दीनी चदरिया, यानी कि मेरी चेतना जैसी थी वैसी की वैसी ही अंत तक बनी रही जब मैंने अंतिम सांस ली, जस की तस धर दीनी चदरिया। मित्रों, ये जो चेतना की जो धवलता है, चेतना की जो पवित्रता है, चेतना की जो निर्मलता है, इनफैक्ट सच पूछे तो हम इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। मान करके चलिए कि दुनिया में जो बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो नवाचार हो रहे हैं, जो आनंद की लहरें अंदर उठती हैं, उन सब का आधार केवल एक ही होता है और वह होता है चेतना की निर्मलता, और इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, इसके अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है कि हम अपनी इस चेतना को प्रदूषित होने से कितना बचा सकते हैं। यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि मनुष्य प्रजाति के सामने शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हमारी चेतना में जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा भी दाग लगता है, हमारा पूरा का पूरा अटेंशन कैसे बिगड़ जाता है, हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर कैसे गड़बड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक भीड़ भरे बाजार में आप घूम रहे हैं। चलिए मैं आपको ना कहूं, आप नाराज हो सकते हैं, मैं घूम रहा हूं, एक भीड़ भरा बाजार है और मैं घूम रहा हूं, मुझे अपने सामने जाने वाले आदमी के पॉकेट से दिखाई दे रहा है कि 100-100 के कुछ नोट बिल्कुल निकलने ही वाले हैं, गिरने ही वाले हैं, और अगर मैं जरा सा भी अपनी उंगलियों से पकड़ करके उसे खींच लूं तो वो नोट मेरे पास आ जाएंगे और उस आदमी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि भीड़ है। मैं ऐसा कर लेता हूं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो मैं ऐसा नहीं करूं और उसको बता दूं कि देखिए भाई साहब, आपके ये रुपए गिरने वाले हैं, ये तो है जस की तस धर दीनी चदरिया, या फिर मुझे लगता है कि यार कौन देख रहा है, क्यों नहीं ये रुपए ले लिए जाए, जरूरत भी है, सामान खरीदना है, मेरे पास कम भी पड़ रहे हैं। तर्क के आधार पर तो आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, और ये आदमी तो अच्छा खासा यार धनी आदमी दिख रहा है, जिस तरह से सूट बूट पहने हुए है, इसको क्या 400-500 रुपए में इसको फर्क पड़ने वाला है, मैं उन रुपयों को खींच लेता हूं, निकाल लेता हूं। जैसे ही वो रुपए मेरे पास आते हैं, अब थोड़ा सा आप संवेदनात्मक स्तर पर जाकर के मेरी प्रक्रियाओं, मेरा जो व्यवहार होगा उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं लगता है कि तुरंत मेरे अंदर एक भय समा जाएगा, एक डर समा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने देख लिया हो, उसे कुछ एहसास हो गया हो। चलिए आधे घंटे तक मैं बाजार में घूमता रहा और मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो अभी तक वो आ जाता। लेकिन इतने में ही मुझे सामने से एक पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता है, पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता है। देखिए इससे पहले भी मुझे पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता रहा है, लेकिन मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब पुलिस वाला मेरी तरफ आ रहा है, कल्पना करके देखिए कि अब मेरे दिमाग में क्या हलचल मचेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने पुलिस में जाकर के रिपोर्ट कर दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आदमी मेरे पास ही आ रहा हो और मुझसे वो पूछताछ करे। अब आप देखिए कि कोई इस बात की संभावना ज्यादा नहीं है, भीड़ है, सब कुछ है, कुछ नहीं होना है, मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ नहीं होना है। लेकिन घटना के रूप में बाहर तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन दिमाग में तो घटनाएं घटित हो रही हैं। और चलिए उसको भी छोड़िए, सबसे बड़ी बात है कि आत्मा में घटनाएं घटित हो रही हैं। ये आत्मा में घटित होने वाली घटनाएं केवल दिमागी स्तर पर आप परेशान नहीं है, आत्मिक स्तर पर भी परेशान है, और बेवजह का एक अपराध बोध मेरे मन में समा जाएगा। और जब जब इस तरह की घटनाएं होंगी, दूसरे की हुई घटनाओं को मैं अखबार में पढ़ूंगा, या मुझे अपने साथ ही कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आएंगी, या मैं अपने ही पॉकेट में रखे हुए पर्स की सुरक्षा के बारे में सोचूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई निकाल ले, तब तक वह घटना मुझे याद आएगी और बिच्छू के डंक की तरह मेरी चेतना में चुभकर जहर की एक हल्की सी फरहरी मेरे अंदर पैदा कर देगी। आपको नहीं लगता कि मैंने अपने चेतना की निर्मलता और पवित्रता को इस छोटी सी लालच के कारण प्रदूषित कर दिया है? तो दोस्तों, चेतना को कैसे हम जस का तस बनाए रख सकें, ये सच पूछिए तो हम सबकी बहुत बड़ी चुनौती है, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि कबीर दास बने जस की तस धर दीनी चदरिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।